हम जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब जगदीश भाई जी से और रमेश भाई जी से तो परिचित है। ऐसे कोई है इस सभा में जो परिचित नहीं है? यज्ञ में जगदीश भाई से और रमेश भाई जी से तो परिचित है ना सभी? सभी परिचित। हाँ, कोई कह रहे हैं कि जगदीश भाई जी से नहीं है लेकिन रमेश भाई जी से, ऐसे भी हो सकते हैं जो नए हैं। हमारे सम्मुख अभी जो छिपे हुए अनमोल रतन है, जैसे आपको ये सेशन का टाइटल है लिविंग लाइब्रेरीज, पिछले बार भी हम लोगों ने ये कराया था, अगर पिछले बार आपको याद है तो ऐसी जो छिपे हुए रतन है जिनके पास अनुभव का खजाना है और जो महारथियों के अंग संग रहे हैं लेकिन कभी सामने नहीं आते, तो ऐसे छिपे हुए रत्नों से रूरुआन पिछले बार भी किया था जो सबको अच्छा लगा, तो हमने सोचा इस बार भी ऐसे ही कुछ करेंगे। तो हमारे सम्मुख जो दो भाई बैठे हैं, दोनों के नाम महेश भाई है, दोनों के नाम महेश भाई है। एक महेश भाई है जो राइट साइड पे बैठे हैं, जो जगदीश भाई जी के किताबों का संग्रह जो है वो पब्लिकेशंस देखते हैं, और मेरे इस तरफ राइट में, इमीडिएट राइट में जो बैठे हैं महेश भाई, वो रमेश भाई के अंग संग रहे हैं और स्पार्क में जितने बहुत सारे किताब, आधे से ज्यादा किताब उन्होंने उसका संकलन लेख लिख के फिर स्पार्क में दिया है, वो अकाउंट्स में और अभी कंस्ट्रक्शन में वो सेवा करते हैं। साकार बाबा के समय से हैं वो, और 1980 से मधुबन में समर्पित है, और वो महेश भाई 1975 से समर्पित है। तो इन दो छिपे हुए अनमोल रत्नों का अनुभव हम सुनेंगे, कुछ प्रश्न भी बाद में अगर ऑडियंस से है तो लेंगे। सबसे पहले मैं भाई जी आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपका खुद का अनुभव एक्सपीरियंस बाबा के साथ और महारथी भाइयों के साथ आप शेयर करें।
ओम शांति। मैं तो हम ज्ञान में 64 में आए थे जुलाई में, और 64 में ही बाबा से हम मिले थे। उसके बाद जो है हम 65 में फिर बाबा से मधुबन आके मिले थे, तब से ही बाबा से बराबर मिलते रहे, और बाबा से हमने देखा कि बाबा का इतना वाइब्रेशन था कि उनके सामने जाते ही मनुष्य अशरीरी हो जाता था, तो जो हमको अशरीरीपन का जो फीलिंग्स जो है नेचुरल होती थी बाबा कुछ करने में जो है, और बाबा को हमने देखा कि बाबा जो है एक जैसे कहते हैं भृगु ऋषि, तो जो फर्स्ट टाइम मिलते थे उसकी ये जीवन कहानी या जीवन पत्री आगे के लिए भी बाबा के जो महावाक्य होते थे वो सारे जीवन उसके लिए वरदान जैसे होते थे, तो तब से ही हमारे को हुआ। और इसकी तो बाबा से तो बराबर मिलते रहते थे, उसके बाद जो है हम 15-16 साल तक कानपुर में थे, कानपुर में गंगे दादी के पास भी हमारे हम रहते थे, तो उनकी पालना भी हमने ली हुई और उनका भी हमने वाइब्रेशन देखा अच्छा। और फिर हम मधुबन जब आए तो रमेश भाई के साथ हमारा संपर्क रहा, अकाउंट में बॉम्बे में भी हम गए उनके पास और यहाँ भी रहे, उनके लेख वगैरह जो लिखते थे तो कई बातें हमने भाई साहब देखा कि वो ज्ञान और योग का जो बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा मेंटेन करते थे, क्योंकि वो बाहर जाकर सेवा भी करते थे, यहाँ लेख भी लिखते थे और बाद बाकी क्लास वगैरह भी कराते थे, और साथ साथ जो है यज्ञ की सेवा का भी पार्ट बजाते थे, तो जो बैलेंस जो था उनके जीवन में वो हमको अच्छा लगा कि जिसके कारण हमारे को भी उससे प्रेरणा मिली। और 87-88 में हम जब बाबा से पहली बार अव्यक्त बाबा से पहली बार अव्यक्त बाबा से मिले, तो अव्यक्त बाबा ने हमको एक प्रश्न पूछा कि ज्ञान से भरपूर हो या नहीं हो, तो अभी हम क्या उत्तर दें? तो हमने एक सेकंड में सोचा कि हाँ करने से भी ठीक नहीं है और ना करने में भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना करेंगे तो फिर असंतुष्ट है और हाँ करेंगे तो भरपूर हो गए, तो फिर क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने अपने आप ही बोला कि भरपूर हैं भी और हो भी रहे हैं। तो वो बाबा के शब्द हैं, आज भी हम यही सोचते हैं कि भरपूर हैं भी और हो भी रहे हैं, क्योंकि बाबा ने जो हमको जितना ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान के दर्पण में हम देखें तो ये जीवन जो है परम आनंदमय है, परम सुखमय है, परम शांतिमय है। तो ये जीवन जो है इसका अनुभव हम करते रहें सदा, तो नहीं जस्टली जो सोचते हैं कि विनाश जल्दी हो जाए, लेकिन हमारे को तो कभी ऐसा संकल्प नहीं आता कि विनाश जल्दी हो या देर से हो या स्वर्ग आए या जाए। हम संगम का जो सुख जो है वो हमको सबसे अच्छा लगता है और इसलिए हम संगम के सुख में ही अपने को जीवन को सफल कर रहे हैं और हमको उसमें सफलता हमको मिली भी है और हमको अनुभव भी है। तो ये जीवन जो है इस जीवन जैसा जीवन कोई भी नहीं। देवताओं के जीवन को देखा जाए तो जीवन देवताओं के जीवन में एक तो शिव बाबा की बायोग्राफी मिला दिया है और ब्राह्मणों की बायोग्राफी मिला दिया है, इसलिए ही ज्यादातर महत्व है। बाद बाकी देवताओं के जीवन में पवित्रता है, जो संगम के जीवन जो हमारी प्राप्तियां हैं उनके जीवन कोई प्राप्ति नहीं है, ना ज्ञान है, ना परमात्मा के साथ मिलन है, ना हम आपस में जब सब लोग मिल रहे हैं तो जो जानकारी से मिल रहे हैं वो भी जानकारी नहीं है, लेकिन खाली पवित्रता के आधार पर सुख शांति संपन्न है। तो ये जीवन का जो महत्व जो हम अपने को रियलाइज करें तो इससे जीवन अच्छा कोई जीवन नहीं है। और इसका लेकिन बात क्या है कि कर्म, क्योंकि हमारा जीवन लास्ट जीवन है, इसमें कर्म भोग और कर्म बंधन ये दोनों चीजें जो हैं हमको परेशान करती हैं, जिसके कारण कभी कभी हम सोचते हैं जल्दी विनाश हो जाए तो हम जल्दी सत्व में चले जाए। लेकिन कर्म बंधन और कर्म भोग इसको पूरा किए हुए ना हम परम धाम जा सकते हैं ना हम सत्व में जा सकते हैं, तो वो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। तो जब हमको पीसफुल टाइम है, जब हमारे को कर्म भोग कर्म बंधन नहीं है, उस समय हम जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना ही हमको कर्म भोग और कर्म बंधन के समय वो हमको सहयोग करेगा। इसलिए हम देखते हैं जो दादियों का हैं, बड़ी दादियां हैं, आदरतन हैं, उन्होंने जो अशरीरीपन का अभ्यास जो 14 साल तक किया हुआ है वो उनके जीवन में हेल्पफुल है। तो
आप बताइए अशरीरीपन का अभ्यास पर भाई जी जो दे रहे हैं कि पुरुषार्थ में रेगुलर अशरीरीपन का अभ्यास जरूरी है, जो हमें दूसरे टाइम पे कर्म बंधन के टाइम पे कर्म भोग के टाइम पे सहयोग देगा, यही बड़ों में उन्होंने देखा और यही पुरुषार्थ उनका चल रहा है।
और हमारा जैसे जो संकल्प है कि जितनी ज्ञान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही हम जो है अशरीरीपन का समय पर अशरीरीपन का अभ्यास कर सकेंगे, क्योंकि अशरीरीपन के अभ्यास के लिए हमको निसंकल्प अवस्था चाहिए और निसंकल्प अवस्था के लिए हमको ज्ञान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बाबा ने जो हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है ये ज्ञान इतना इफेक्टिव है कि यदि हमारी बुद्धि में ड्रामा का ज्ञान सही रीत से रहे तो हम कभी भी निसंकल्प हो सकते हैं। और बाबा ने जो अभी हमको कर्तव्य दिया है कि विश्व कल्याण की सेवा के लिए, तो हम विश्व कल्याण का संकल्प के लिए हमको शुभ संकल्प चाहिए, और शुभ संकल्प हमारा तभी होगा जब हमारी किसी आत्माओं के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा। यदि हमारे किसी से घृणा है, राग द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष है, तो हम कभी भी शुभ संकल्प नहीं रख सकते। इसीलिए बाबा ने कई बार बोला हुआ है कि यदि एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारा जो है राग द्वेष है, जो तो है घृणा की भावना है, तो तुम विश्व कल्याणकारी नहीं कहला सकते हो। तो हम बाबा के साथ में हैं तो हमको शुभ संकल्प के लिए भी ड्रामा का ज्ञान जो है हमको बहुत जरूरी है, और निर्विकल्प अवस्था के लिए भी हमको ड्रामा का ज्ञान आवश्यक है। तो जितनी ज्ञान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही हम निसंकल्प निर्विकल्प और शुभ संकल्प की अवस्था को बना सकेंगे, और संगम का जो जैसे कि परम शांति, परम सुख, परम आनंद का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि जीवन परमानंद में है, उसके लिए ज्ञान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। तो हम तो जहां तक हमारा संकल्प रहता है कि बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया हुआ है उससे अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको खुद भी हो और दूसरी आत्माओं को भी जितना हम सहयोग कर सकें उतना हम कर सकें, तो उस संकल्प को लेकर के ही हम जो लिखने करने का जो भी हमारा संकल्प रहता है वो इसलिए रहता है कि हमको तो फायदा भी हो दूसरों को भी, क्योंकि हम दूसरे के लिए संकल्प रखते हैं तो उसका लाभ हमारे को भी होता है, क्योंकि उससे हमारा जो चिंतन चलता है, जिससे चिंतन से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हमारी अवस्था जो है अच्छी रहती है। तो हमारे को तो ये है कि ज्ञान की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी हमारी अवस्था अच्छी रहेगी, साथ साथ क्योंकि ज्ञान और बाबा ने हमको सिखाया ही है कि एक तो है योग में भाव प्रधानता ज्यादा होती है और ज्ञान में, तो ये हमारा जीवन बैलेंस का है, भाव प्रधान भी नहीं है और ज्ञान प्रधान वो भी नहीं है, तो दोनों का बैलेंस भी बाबा ने हमको सिखाया हुआ है, तो हमको योग और ज्ञान दोनों हमारा अच्छा रहेगा।
थैंक यू भाई जी। महेश भाई, मेरे पास लंबी लिस्ट है जो महेश भाई ने स्पार्क में कंट्रीब्यूट किया है। वो बोल रहे थे रस्ते में कि कुछ है अभी भी चखना है, और बाकी का तो मैंने दे दिया, वो आके ले जाते हैं, मैं ऐसे ही लिख के रखता हूँ तो ले लेते हैं। तो बहुत सारे किताबें हैं जो आधे से ज्यादा है स्पार्क में, वो भाई जी ने लिखा है, संकलन किया है, उसका मनन चिंतन चला है। कुछ ही मैं पढ़ूंगी, जैसे फरिश्ता और अनुभव की अथॉरिटी, गीता और गीता ज्ञानदाता, फिर कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, कर्म कर्म का विधि विधान और सिद्धांत, मुरली मधुबन मधुसूदन, नवयुग और नवयुग निर्माता, ऐसे काफी सारे किताबें हैं, और ड्रामा उसका भी है, और एडवांस पार्टी का भी उन्होंने लिखा है उस पर, उसमें बाबा की मुरलियों का संकलन भी है और उनका लेख भी हमें मिलता है। मैं महेश भाई से पूछना चाहूंगी, उनका सार रूप में अपना अनुभव सुनाए, फिर प्रश्न लेंगे।
ओम शांति। आप सब भाई बहनों को देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि बाबा को ज्ञान है, सिर्फ सुनने का नहीं है, चिंतन करने का और कुछ ढूंढ निकालने का। ये काम आप सब स्पार्कलर्स, स्पार्किंग स्टार्स कर रहे हैं। जो आप लोग जो सेवा करते थे, करते हैं, वही सेवा बाबा ने भी मुझे दिया है। मैं भी कुछ जगदीश भाई साहब के साथ रहकर, उन्होंने जो मुरलियों पर जो रिसर्च करने के लिए काम दिया था वो भी हमने किया है। अच्छा, ये मेरा अनुभव, मैं सन 1974 में बाबा के बच्चा बना, परिवार में सारा परिवार बाबा के बच्चे हैं, दो बहनें समर्पित है, एक गुजरात में रहती है, कर्नाटक में। जब मैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब बाबा मिला, अभी एक साल पढ़ने का बाकी था। शायद आप 1975 से पहले जो ज्ञान में आए हैं आप लोगों ने सुना होगा, 76 में क्या होने वाला था, विनाश होने वाला था। तो जब हमने ये सुना तो हमने सोचा अभी एक साल पढ़ना बाकी है, भगवान तो एक ही साल रहेगा, 76 में चला जाएगा, अब इस हम पुरुष बाबा की सेवा कैसे करें, सबको संदेश कैसे दे। जो मैं रेगुलर स्टूडेंट था लौकिक में, अब एक साल बाकी रहा तो जाने के लिए मन ही नहीं करता था, बाबा की सेवा में लग गए। मैं निकला हूं कर्नाटक के हुबली से, वहां 6x4 फुट के जो बड़े बड़े चित्र होते थे उसको उठा उठा के हम लोग एग्जीबिशन करने जाते थे कुमार लोग, तो उसमें मैं लग गए मेले में। फिर करे क्या, एक साल बाकी है फाइनल ईयर, प्रीवियस तो पढ़ लिया था, फाइनल तो पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे साथ में मेरा दोस्त था, उसको मैंने बताया, भाई मैं तो भगवान की सेवा में जा रहा हूं, आप मेरे सिग्नेचर करना। वहां अटेंडेंस कैसे लेते हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे नाम सुना कि नहीं लेते, रजिस्टर होता है, हर एक अपना अपना सिग्नेचर करे, तो उसको मेरा सिग्नेचर दिखा दिया था, ऐसा करो। तो हम सेवा में लग गए पूरे साल। जब ईयर एंड, जब हम कहां गए थे, शायद मैंगलोर में सेवा करने गए थे एग्जीबिशन लेके, तब वहां का भाई ने पूछा, भाई आपको एग्जाम कब है, तो मुझे याद ही नहीं एग्जाम कब है। पूछा गया तो 2 दिन के बाद एग्जाम थे, फाइनल एग्जाम। आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन के कितना लिखना पड़ता है, आज शनिवार है, सोमवार से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो भाई ने बोला, भाई आप माँ बाप इतना सारा पढ़ाया, आप तो मृत्युंजय थे उस समय साथ में, तो भाई आप इतने सारा पढ़ा है तो अभी एग्जाम है तो आप एग्जाम गए नहीं, क्या बात है? तो नहीं मैं नहीं जाऊं, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, नहीं नहीं जाना ही पड़ेगा। तो गया एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मैं बाबा से बोला, बाबा मैं क्या लिखूं, पूरे साल तो आपकी सेवा में लगा हुआ हूं, हां और 76 में आपका सारा प्लान ही ऐसा है, तो करूं क्या? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तो मैं बताते जाऊंगा, तुम लिखते जाना। तो एग्जाम हॉल में आपको पता है 4 आवर्स होता है, चार घंटे होते हैं एक दिन, एक लिखने के लिए कम से कम 40 पेजेस लिखना चाहिए। आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे वो भी आर्ट्स वाले, कम से कम एक प्रश्न को 10-10 पेजेस लिखना होता है। तो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये सारे होते हैं। तो मैं जाकर बैठा, एक घंटे तक सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ता रहा बार 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 बार। तो एग्जामिनर मुझे देखने लगा, ये क्या हो गया इसको। फिर मैंने क्या किया, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लिख लिया, कितने पेज में, 10 पेज में 10 क्वेश्चंस लिख लिया। कैसे, बहुत धीरे धीरे बहुत सुंदर अक्षरों में लिख लिया, फिर एक घंटा बैठ कर उसको री रीडिंग किया, दोबारा पढ़ा उसको जो लिखा है, एक भी मिस्टेक ना हो ऐसा हो। 3 घंटे बीत गए और 1 घंटा बाकी रहा, तो पेपर देख के मैं चला गया, बाहर जाने लगा। एग्जामिनर बोलता है, अरे भाई 1 घंटा अभी बाकी है, क्यों जा रहे हो? मैं कहने सर पूरा हो गया। नहीं, लोगों को 4 घंटे कम पड़ते हैं, तुम 3 घंटे पहले जा रहे हो। तो लेकिन कमाल ये थी, कैसे लिखा मैंने, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप लिखवाओ। तो मैं जब ब्लैंक पेपर पर पेन रखा, हाथ रखा, तो आगे आगे शिव बाबा जाते रहा, पीछे पीछे हम लिखते रहे। जो याद था, ग्रेजुएशन में 2 साल भी वही पढ़ते हैं, उसी को वास्ट में ये जो मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी मैंने पढ़ा था ना, वो जो याद था उतना लिख के लिख के लिख के। तो मुझे ये भी पता था 40 पेज का जो एग्जाम 10 पेज में लिखा है तो पास होना तो है नहीं। तो फिर हमने एग्जामिनेशन पूरा किया, फिर चल पड़े सेवा में। फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो घर में सब परेशान, पिताजी बार बार फोन करते रहे, भाई रिजल्ट क्या हुआ क्या हुआ। हुबली पे सेंटर पर करने लगे, मैं तो सेंटर में था ही नहीं, चला गया था सेवा में। तो फिर सेंटर से फोन आया, भाई आपका रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, वो मुझे याद ही नहीं क्या। तो फिर मेरे पीछे वाला ही मेरा जो फ्रेंड था उसको फोन किया, भाई भाई मेरा नंबर क्या है देखो। फिर उसने कहा, भैया आपका 2nd क्लास में पास हुआ है। ये घटना बताने के कारण में ये है कि हमें बाबा पर जितना जितना विश्वास है वो काम करता है, और बाबा के सेवा पर जब जरूरत पड़ती है उस समय हम जब सहयोग देते हैं, तो बाबा ने बोला है समय पर जो मुझे सहयोग देते हैं उनको मैं अंत तक सहयोग देता हूं। जब हम लोग निकले थे उस समय कुमार बहुत कम थे, एग्जीबिशन करना था, क्योंकि उनको भी पता था 76 में विनाश होने वाला, उसके अंदर सारे वो ना उत्तर कर्नाटक वालों को संदेश दे रहे, तो इसलिए हम 4-5 कुमार उसको उठा उठा के बोर्ड, हमाल भी कुली जो होते हैं ना बस में नहीं चढ़ाते थे, हम खुद उसको उठा के बस में चढ़ाते थे, उतारते थे। तो उस बाबा के जो समय पर हमने सहयोग दिया, बाबा ने हमने सहयोग, इसलिए बाबा की सेवा में हम कभी भी आनाकानी नहीं करना चाहिए। ये हो गई 1st इंसिडेंट। और 2nd इंसिडेंट, जब उसको पास होने के बाद रिजल्ट वो लेते हैं ना सर्टिफिकेट, वो कैसे ले, तो लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनसे मिलके सर्टिफिकेट लेना होता है। तो मैं गया ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का ऑफिस में, सर मेरा सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो मेरे को देखने लगा, कौन हो तुम? सर मैंने आपका स्टूडेंट, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। कब का स्टूडेंट है, किस साल का स्टूडेंट है? तो उनके सर इसी साल का। अच्छा तुम पास हो गया? जी सर पास हुआ। सेकंड क्लास में वो मेरे से पीछे से लेकर ऊपर तक देखने लगा। क्यों? उस समय 1970 में, उस समय सेकंड क्लास में पास होना मना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा तुम सेकंड क्लास में पास हुआ है, लेकिन तुमको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा सर मैं पीछे बैठा करता था। तो पीछे बैठा तो ठीक है, लेकिन मैंने तुमको देखा नहीं, क्योंकि वहां आपको पता होगा हर महीने हर एक स्टूडेंट को एक पेपर सबमिट करना पड़ता है, स्टेज पर जाके पढ़ना पड़ता है वो डिपार्टमेंट हेड के सामने। तो ठीक मैं मान लेता हूँ भाई तुम पीछे बैठा था, लेकिन तुम कभी स्टेज पर मैंने देखा ही नहीं, कभी तुमने पेपर सबमिट किया नहीं। तो फंस गए वहां। मैं कहा बाबा मैं भी क्या करूं मैं। तो उस समय आपने देखा होगा जो पुरानों के पास ट्रायंगल बैज होता है, रेड डार्क रेड में शिव बाबा और पीछे त्रिमूर्ति का वो बैज होता था, वो बैज मैंने पहना था। और शिव बाबा का वो तो बहुत चमकीला होता ना, इतना चमकता था जब वो लाइट जली थी ना, वो लाइट में वो चमकने लगा शिव बाबा का वो बैज, तो उसकी दृष्टि उस पर गई। तो ये क्या है? तो मैं हाँ अभी आ गया रास्ते में फंस गया। मुझे यही चाहिए तो बाबा मैं क्या करूं सोच रहा था। तो फट से तो बीके को तो चांस चाहिए ज्ञान पूछने वाले, फटाफट मैंने उसको शिव बाबा का परिचय दिया, त्रिमूर्ति का चित्र लगा के त्रिमूर्ति और तीन लोगों का परिचय दिया। और जब तीन लोगों का परिचय दिया ना, वो एकदम एक मिनट के लिए एकदम गायब हो गए, कहाँ गए पता नहीं। तो उसके बाद फिर एक मिनट के बाद शांत के पूछा तुम कहीं जाते हो क्या? मैंने कहा हाँ सर मैं ईश्वर विश्वविद्यालय जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा ठीक, सर्टिफिकेट दिया, वहां से भाग गए एक सेकंड में। ये है बाबा की क्षमा।
बहुत सुंदर महेश भाई, आप पहले से एक किताबों में रुचि रखते थे या जगदीश भाई के साथ आने के बाद आपको ये किताबों का संकलन करना, एडिटिंग करना, उसका कंपाइलिंग करने का रुचि हुआ?
मेरा अलौकिक जन्म होते ही साहित्य की सेवा शुरू हो गई। जब मैं हुबली में था वहाँ भी लिटरेचर डिपार्टमेंट ही देखता था। शायद यहाँ कर्नाटक वाले कोई होंगे तो विश्व नव निर्माण नामक एक पत्रिका है, उसके जो शुरुआत उस समय ही हुए, उसका मैं एडिटर था और उसको सारा लिटरेचर का छपवाना, शिवकाशी जाके छपवाना, वो करने सारा करता था। और ये विश्व नवनिर्माण ज्यादातर आर्टिकल्स जैसे जगदीश भाई बहनों के नाम से लिखते थे ना, ऐसे मेरा भी एक पार्ट रहा, लिखता था मैं ही, बहनों का नाम से छपवाता था। इस तरह शुरू से लेकर मेरे साहित्य की सेवा है।
क्योंकि ये महेश भाई ने तो बोला कि उनको क्यों रुचि हुई, क्योंकि वो देखते थे कि कैसे बैलेंस रखते वो कार्य करते हुए भी वो इतने सारे लेख लिखते हैं, तो इनको भी लगा, वो रुचि लगा। लेकिन उनको तो पहले से ही वही डिपार्टमेंट दिया, लेकिन ये महेश भाई जो है काफी सारे डिपार्टमेंट्स में थे, कंस्ट्रक्शन, अकाउंट्स वगैरह वगैरह, बाद में ही लेख में शायद आए। महेश भाई ऐसे है, बाद में ही लेख में आए। तो कब से शुरू किया आपने लेख लिखना?
लिखने का जो काम तो है, हमने 95-96 से शुरू किया और उससे अभी तक चलता रहता है बराबर।
95 से शुरू किया, तो आप देखते थे कि भाई साहब तो लेख भी लिखते हैं, कि फिर बहुत सारा कारोबार भी करते थे और पुरुषार्थ में भी माहिर है, वो क्या चीजें थी जब आप उनके अंग संग, अकाउंट्स में भी आपने सेवाएं दी है, तो उनके अंग संग जब आप सेवा करते थे, वैसी कौन सी बातें थी जो आपको लगा इस पर अटेंशन रखने से बैलेंस आ जाएगा?
वैसे तो भाई साहब जैसे लेख वगैरह लिखते थे, उनका लेख भी हम लिखते थे और करते थे, हम ही लिखते थे, तो कोई बात होती तो पूछ भी लेते थे हम उनसे। जैसे एक बार हमने पूछा, वो तो शायद सब बहनों को ही पता होगा और भाइयों को पता होगा, जनरली अभी किसी भाई बहन से जनरली पूछा जाए कि शत्रु में कितने जन्म होंगे और कितने जो हैं गद्दियां चलेंगी, तो जनरली जो है भाई बहन यही बोल देते हैं कि 8 गद्दी चलेंगे और 8 जन्म होंगे। लेकिन कोई भी कैलकुलेशन करके बताए कि 8 जन्म 8 गद्दियां कैसे होंगी? तो भाई साहब का हम लिख रहे थे तो ऐसे ही इंस्टेंस आया, तो हमने भाई साहब पूछा, तो भाई साहब ने बोला कि मम्मा के टाइम पर भी ये बात निकली थी कि गद्दियां जो हैं 17-18 चलनी चाहिए, लेकिन आज तक जो है किसी ने इस बात को नहीं किया कि वो बसुराज भाई जी ने जो किताब लिखी हुई है उसमें उन्होंने कुछ इसका डिटेल दिया हुआ है। तो क्या है कि हमारा ये ज्ञान भाई साहब से तो हमने प्रेरणा ली कि हमको ज्ञान का भी बैलेंस रखना चाहिए, ज्ञान योग का भी और सेवा का भी, लेकिन साथ साथ हमने बाबा की, हमारा जो कंसंट्रेशन रहा वो बाबा की मुरली पे रहा, और बाबा की मुरली में बाबा ने जितने जो जो पॉइंट निकालते हैं बाबा देते हैं उन पॉइंट को हम फिर हमारी बुद्धि में आता है और उसके आधार पर हमने लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद कलेक्शन में बाबा की मुरली का भी कलेक्शन किया और हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी हमने लिखना शुरू किया। तो हम कहीं भी बैठे, जब बाबा कमरे में बैठे हुए हैं तो हमारी स्मृति शक्ति जो है इतनी तेज नहीं है, तो हमको जो है हम उसी समय नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद फिर कंप्यूटर में हम उसको नोट कर देते हैं, जिस कारण वो किताब का ये बनाने का जो है प्रोसेस चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है।
महेश पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो हम कुछ करना चाहते हैं या फिर रेफरेंस लेना चाहते हैं वो सारे मना, कई भी यज्ञ में आप किसी से भी पूछो कि ज्ञान को और बेहतर समझना है, एक तो मुरली है, दूसरा बोलते हैं जगदीश भाई के किताबें पढ़ लो। और अभी जो थोड़ा ट्रेंड चल रहा है अभी नया नया, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है करके, बाहर की चीजें किताबें हो थोड़ा रेफरेंस लेते, हल्का फुल्का सा हो ऐसे रेफरेंस लेते हैं, लेकिन महारथियों का जो लेख है उसमें एक चीज मैंने नोटिस की, सारा रेफरेंसेस मुरलियों से ही होता है। तो आपने करीब से भाई साहब को देखा है कि उनका जो स्टडी था, कि मैंने सुना है बहुत सारे किताबें रहती थी लेकिन भाई साहब बोलते थे आपको कुछ भी पूछना है मेरे से पूछना, लेकिन ये किताब नहीं पढ़ना, आपके लिए नहीं है ये। तो उनकी क्या अटेंशन थी जब भी किसी कोई भी के किसी भी एंगल से समझना चाहते थे, कोई भी ऐसे सवाल हो, कोई ऐसी चीज हो ज्ञान में समझना चाहते थे, तो भाई साहब का क्या उत्तर होता था, क्या कहते थे कि आप क्या रेफर करो और किस में जाओ?
आप लोगों ने तो कई ज्ञान सुधा किताब पढ़ी है, चार भाग है, सबने पढ़ी है, उसमें एक प्रश्न का उत्तर आया हुआ है। कई लोगों को ना आजकल, ज्यादातर आजकल की जो पीढ़ी है वो सुनना पढ़ना और देखना ये बहुत चाहती है। आजकल इंटरनेट आने के बाद तो पढ़ने से ज्यादा देखना सुनना ये पसंद करते हैं, उसमें ये सारे आ जाते हैं, अच्छा भी आ जाता है बुरा भी आ जाता है। आजकल जो यूट्यूब में जो अपलोड करते हैं उसमें कैसी कैसी बातें आती है आप लोग जानते हैं, इसलिए ऐसी बातों से सबसे पहले हम लोग बहुत जागरूक रहना चाहिए। कल किसी ने मेरे को एक लिंक भेजा था, ड्रामा का राज, प्रतिमा सिस्टर प्रतिमा के नाम से, वो कौन सी प्रतिमा पता नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें अगर आप लोग पढ़ते जाएंगे आप ज्ञान से भटक जाएंगे। तो यही बात जगदीश भाई साहब ने बार बार सब भाई बहनों को कहते थे, आप बहुत जरूरी है तो बाहर का रेफरेंस लो, नहीं तो जरूरत नहीं। कई बार उन्होंने कई बहनों को बोलते थे आप बाबा का ज्ञान सीधा सुनाओ सभा में, डायरेक्ट परमात्मा निराकार है, परमात्मा अवतरण हुआ है, ऐसे जो ज्ञान है वो डायरेक्ट घुमा फिरा के मत सुनाया करो। अभी दूसरे ज्ञान का आधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जब शुरुआत में बिफोर 1960 जब हमारी संस्था बहुत छोटी थी, हमारी संख्या बहुत कम थी, उस समय के भाई बहने सीधा चैलेंज करते थे भगवान निराकार है, भगवान आया हुआ है, कृष्ण परमात्मा नहीं है। अभी तो हमारा बहुत कितनी मेजोरिटी है, कितना परिवार कितना बड़ा है, हमारी संख्या कितना है, तो डरना क्यों है, हम घुमा फिरा के क्यों इस ज्ञान को देते हैं। और ये भी देख लीजिए, अगर आप लोग बाहर का भी ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान कितना भी बड़ा चिंतक हो, कितना भी बड़ा महाज्ञानी हो, महापंडित हो, महा रिसर्च स्कॉलर हो, लेकिन वो है कौन है, मनुष्य है ना, मनुष्य अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ तो होता ही नहीं। लेकिन हमारा ज्ञान किसने दिया है, सर्वज्ञ। इसलिए जब तक अगर हम लोगों को बाहर का नॉलेज पढ़ने में रुचि है, इसका अर्थ है कि हम बाबा पर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है 100%, डेफिनेटली। मैंने भी जगदीश भाई की कितने किताब, वो जब रहे उस समय मैंने करीब 25 किताब उनकी किताब बनाए, जब वो जिंदा रहे 25 किताब उनकी बनाए, वे जाने के बाद करीब लगभग 40 किताब मैंने तैयार किया है। अभी तक मैंने कोई बाहर वाली किताब पढ़ी नहीं, जो पढ़ा था वही लौकिक में पढ़ते समय। आपने देखा होगा जगदम्बा सरस्वती, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पढ़ी है किसने? कहा वो आप उसमें देखो रेफरेंस कितना है, अगर वो पढ़ेगा कहते ये लिखने वाला कोई बहुत बड़ा वेद शास्त्र पुराण पढ़ा होगा, वो सारा रेफरेंस है। वो कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं मैंने जब बनाना शुरू किया वो अपने आप वो सारे पॉइंट्स मिल गए। आप स्कॉलर्स है, स्पार्कलर्स है, आप लोगों को तो पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन जगदीश भाई इसलिए कहते थे मुझे पढ़ना पड़ता है, क्यों? मुझे बाबा ने वरदान दिया था, बच्चे आप लौकिक पढ़ के उसको अलौकिक में परिवर्तन करके समझाओ। लेकिन हमारे में अगर उतनी शक्ति है लौकिक को पढ़कर उसके प्रभाव में न आकर ईश्वर ज्ञान को प्रधानता दे, अगर उतनी शक्ति है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मत पढ़िए। बुद्धि उसको वाश कर देती है लौकिक ज्ञान। मैंने आपने भी कई किताब देखी होगी, कई लोगों ने किताब लिखी हुई है ज्ञान में आने के बाद, अगर आप उसको पढ़ेंगे और चार पांच किताब पढ़ते हैं तो पांच पढ़कर छठवा अपना विचार रख के किताब लिखते हैं। जगदीश भाई जब लिखते थे उस ज्ञान का आधार लेकर ईश्वर ज्ञान ही प्रधान है, श्रेष्ठ है, ये सिद्ध करते थे। अभी हम आजकल क्या कर रहे हैं, दोनों साथ साथ। हमारा बाबा भी ऐसा ही बोला है, जैसे ये महात्मा जी बोले हैं ना ऐसे बाबा ने भी बोला है, इस तरह हम नहीं करते। इसमें नीचता किसकी हुई? जब हम कहते हैं हमारा ज्ञान भी उन जैसा ही है तो इसका क्या हुआ, ये तो भगवान के लिए इंसल्ट हो गया। इसलिए जगदीश से बार बार बोलते थे अगर आपको जरूरी है तो बाहर का रेफरेंस लो, बाहर की किताब पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही नहीं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, यही सच्ची है। तो मैंने जगदीश भाई साहब ने जो लिख के दिया था उनकी किताब बनाई, और बाकी जो मैं पर्सनली बनाया वो जाने के बाद वो अनुभव की किताब है, जैसे प्रभु प्रेम के परवाने, भाग्य विधाता है, वंदे मातरम है, ये ऐसी किताब मैंने बनाई। और अव्यक्त मूल्यों से मैंने ज्यादा बनाई, जैसे विधेय अवस्था है, कर्मतीत अवस्था है, कर्मयोगी फरिश्ता है, संपन्न बाप समान संपन्न संपूर्णता है, वाहरे में ब्राह्मण आत्मा है, ये अव्यक्त मूल्य के आधार पर किताब बनाई।
एज ए स्पार्कलर ये बहुत बड़ी सीख है और सावधानी भी है हम सब के लिए कि जितनी गहराई में जाना चाहते हैं उतना हमें मुरलियों पर ध्यान देना होगा, जो यज्ञ में ऑथेंटिक बनी हुई है, किताब हो या बाबा की मुरली हो, उस पर ध्यान देना होगा, ना कि बाहर की चीजों में। वैसे मुझे याद है एक बार रमेश भाई जी ने भी मीटिंग में कहा था कि बाबा ने मुझे छुट्टी दिया था कि भले तुम क्लास पर ना हो मुरली के क्लास पर, लेकिन ये अकाउंट्स की जो कारोबार है ना उसके लिए जितना भी तुम्हें पढ़ना है ना वो पढ़ सकते हो। लेकिन रमेश भाई जी ने उसमें ये बोला कि आप लोगों को ये छुट्टी मिले तो आप क्या करोगे, ये पूछा था उन्होंने मीटिंग में, आपको अगर छुट्टी मिले तो आप क्या करोगे, तो आप तो वैसे बाबा ने छुट्टी दिया करके एब्सेंट हो जाते हो, लेकिन मैं नहीं करता था ऐसे वो बोलते थे। तो इनको वरदान था क्योंकि खास वो उसी कार्य के लिए निमित्त थे। तो जैसे महेश भाई ने बोला कि हमें उतना कैपेसिटी है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनमें वो था इसलिए बाबा ने उनको निमित्त बनाया और वरदान भी दिया। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हम इनसे सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हम बड़ों को देखते हैं तो अच्छा ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो आप दोनों से ये सवाल है, आप दोनों जब लेख लिखते थे या कोई भी चीज करते थे, रमेश भाई जी या जगदीश भाई जी, आपने करीब से उनको देखा है, वो सब कुछ करते थे, यज्ञ में ज्ञान योग के सिवाय यज्ञ की जो भी कारोबार थी तो वो भी संभालते थे दोनों। तो जब उनको आप देखते थे तो कौन सी बातें थी जो आपको लगा कि ये चीज है जो धारणा युक्त है, ये चीज है जिससे मुझे प्रेरणा मिली है अपने लिए? उनकी दिनचर्या को जब आप देखते थे तो फिर आपको क्या प्रेरणा मिलता था?
जहाँ तक दिनचर्या की बात है वो तो आपने क्लियर कर ही दिया है कि वो सब कुछ करते हुए भी क्लास को जो रेगुलर अटेंड करते ही थे वो तो। लेकिन एक बात और, हमारी जैसे अभी चर्चा चली उसके बारे में बोलते हैं कि दुनिया का कितना भी ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, यदि आपको सही निश्चय है तो आप देखेंगे सारा ज्ञान जो है दुनिया का जितना भी ज्ञान है, व्यक्ति हो या ज्ञान हो या कोई, सब उतरती कला का है। चढ़ती कला का ज्ञान जो है बाबा ने ही हमको दिया हुआ है। तो हमको जब यदि चढ़ती कला में जाना है तो हमको उससे ही उससे ही कुछ जो कुछ मिलना है उससे ही मिलने वाला है। भौतिक जो बाहर की दुनिया का जो भी ज्ञान है उससे हमारी अवस्था जो है, कहें हम कहें चढ़ती कला में जाएगी कभी जा नहीं सकती, उतरती कला में ही जाएगी। भले किसी को जैसे कि हम प्रेशर करने के लिए हम उदाहरण दुनिया के उदाहरण देते हैं, लेकिन यदि हम बाबा का निश्चय रख करके सही रीत से उसको बाबा का ही ज्ञान देंगे, उस पर बाबा निश्चय रखे तो वो भी अपील करेगा उसे। ऐसा नहीं कि हम कोई खाली उसको बाहर के प्रेशर डाल करके ज्ञान का जैसे अपना जैसे इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक अहंकार ही हो जाता है। लेकिन जो बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया हुआ है उसको यदि हम उसके सामने रखेंगे, बाबा के विश्वास रख करके, निश्चय रख करके, उसको जैसे भाई भाई की दृष्टि रख करके, तो हमारा ज्ञान उसको अपील करेगा ही। क्योंकि उतरती कला का ज्ञान से हम चाहेंगे कोई चढ़ती कला में चला जाएगा, जा नहीं सकता है। और जहां तक भाई साहब हमने संपर्क में आए हैं तो हमने देखा कि उन्होंने जितना जो हम तो पहले बोल चुके हैं कि बैलेंस जो उन्होंने रखा उस बैलेंस से उनकी अवस्था, उन्होंने तन मन खाली एक ही नहीं है, देखा जाए तन मन धन जिसने जो भी था सब तरह से उन्होंने यज्ञ के प्रति वफादार रहे और किया हुआ। एक उदाहरण के रूप में ही हम कहने सकते हैं कि एक बार हमने एक लेटर लिखा रहे थे तो हमारा एक केस चल रहा था इनकम टैक्स का, तो उन्होंने इतने बड़े होते हुए भी ऐसे लेटर लिखा, हमको वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं तो ऐसे कमीशन को लेटर लिखा था, हमारे लिखाया तो उन्होंने इतना नम्र होकर के भी लेटर लिखाया जिससे मतलब कि यज्ञ के प्रति, यज्ञ के हित के प्रति। तो हमारे को भी जैसे कोई बात ऐसी आती है तो कोई हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमने उनके देखा कि कितना यज्ञ के प्रति वफादारी से उन्होंने काम किया।
देखिए यज्ञ के प्रति कितना हम वफादार और नम्र रहने का इसके उदाहरण देते देते महेश भाई के गला भर गया, रमेश भाई के याद आ गए। तो इसी प्रकार इससे हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, मैं यज्ञ के प्रति कितना वफादार हूँ। सिर्फ यज्ञ रक्षक समर्पित वाले नहीं है, हम सब है। सिर्फ यज्ञ के लिए जो जिन्होंने भी बड़े, जगदीश भाई है, रमेश भाई है, दादा है, दादाए है, दादिया है, यज्ञ के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। आप तो जगदीश भाई के अनुभव में सुना होगा ना, यज्ञ के लिए विरोध करने वाले उनको मारने तक तैयार हो गए थे, मारने के लिए भी आए थे लेकिन उन्होंने डराने। उसी प्रकार हम बाबा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के सेंटर के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना है। अच्छा प्रश्न था इन्होंने अपना बैलेंस कैसे रखा था। तो जगदीश भाई को मैंने देखा, उनकी दिनचर्या शुरू होती थी सुबह 2 बजे से। 2 बजे उठ के वो योग करने तो बैठते थे लेकिन बाबा छोड़ता नहीं, तो 2 बजे से शुरू कर लेते थे उनसे सेवा लेने। तो वो ना जब योग करने बैठते बैठते तो उनको टचिंग शुरू हो, क्योंकि जब वो अपने कमरे में, शायद कमरा आप लोगों ने देखा नहीं देखा पता नहीं, कमरे में एक बेड था, एक टिपाए, एक चेयर और सारी अलमारियां। वो बेड ही उनका, चेयर टेबल सब कुछ वही है, डाइनिंग हॉल सब कुछ वही था। वहां वो लेटे लेटे या बैठे ऐसे बैठ के योग करना शुरू करते थे, सामने बाबा का फोटो रहता था। तो जब योग करते थे तो बाबा को देखते ही बस बगल में ही वो जो होता है ना पैड, पेन पेपर रेडी, बस बाबा शुरू कर देता था, ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो। उनका जो पुरुषार्थ था ना, हमारे जैसे स्पेशल पुरुषार्थ नहीं था, वो अपने योग करने के लिए अलग से समय निकाल के नहीं करते थे, करते थे जब 4 से 5 बजे सब बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो है ना इकट्ठा सामूहिक योग करते हैं उस समय करते थे। लेकिन 2 बजे से उनका अपना पर्सनल सेवा में भी योग उनका, नेचुरल योग होता था, तो उनका जो जो बाबा बोलता है ना, मुझे यूज किया करो बच्चे, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सदा अपने साथ रखने और मुझे यूज करने की आदत डाल, यूज करो, कोई भी काम करते हैं उसको यूज करो, मुझे ले चलो, अपने काम में सहयोगी बनाओ। उसी तरह उनका सुबह से उठते ही बाबा के साथ उनका लाइफ चलता था। एक बार के मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम दिल्ली में थे, ज्ञानामृत 32 पेज के ज्ञानामृत होता है, तो सारे ज्ञानामृत को उन्होंने मैटर दे दिया था, सब हो गया था, कंपोज हुआ था, फाइनल करेक्शन हुआ था, सब तैयार, बस अभी प्रिंटिंग में देना है। उतने में जगदीश भाई का फोन आया आतम भाई को, आतम भाई वो मैटर चेंज करना है और मैगजीन दूसरा बनाना है। आपको पता होना चाहिए मैगजीन का जो पोस्टिंग होता है डेट फिक्स होती है, उसी दिन हम पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो रेट कंसेशन होता है, अगर उस दिन हम नहीं डालेंगे उसको 3 गुना 4 गुना पैसा टिकट लगा के भेजना पड़ता था। जब कल के दिन छपवाने के लिए देना है तो भाई साहब का फोन आया, मैटर कैंसल, दोबारा दूसरा मैटर। तो मैं वो अकेला था उस समय, मुझे ही टाइप करना पड़ता था, तो आदम भाई करेक्शन करते थे, फिर मुझे एक पेज बना के उसको तैयार करना पड़ता था। मैंने कहा भाई साहब दिन रात लगा, तो वो आतम भाई मेरे को बोला, भाई जगदीश भाई ऐसा बोलता, मैं कहा मैं नहीं होता, मैं अभी अभी तक तो रात भर काम किया, फिर आप कहे तो सारा मैटर चेंज, एक दो पेज हो तो कोई चेंज करेगा, 32 पेज कौन टाइप करेगा, तो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जगदीश भाई को फोन करके बताया, जगदीश भाई डायरेक्ट मेरे को फोन किया, भाई वो ऐसा है ऐसा। मैंने कहा भाई साहब अब कल आपको प्रिंटिंग देना है, परसों 2 दिन में पोस्टिंग करना है, ये कैसा हो सकता है, तो आप पहले सोच समझ के दिया होगा ना, क्योंकि भाई करने वाले हम है ना, तो हम तो मुझे थक गया था रात भर काम करके, तो हंसने लगे, भाई मैं तो सोच के समझ के लिख के दिया था, लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना, वो कहता है ये मैटर बदल दो, तो अभी मैं क्या करूं, जब ऊपर वाला का नाम लिया मुझे संकल्प आया, भाई साहब ऊपर वाला पहले नहीं बताया क्या ये मैटर जाता था मैं, लेकिन बड़ों को मैं कैसे बोलूं, ठीक है भाई साहब, फिर दिन रात जाके मैगजीन तैयार किया। मतलब ये कहने का भाव ये है, उनको बाबा के साथ कनेक्शन कितना गहरा रहता है, हर पल 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 बाबा उनको डायरेक्शन देता रहता है। तो बड़ों की यही विशेषता है, वो हमारे जैसे अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, उनकी सेवा और पुरुषार्थ साथ 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 चलते थे।
वैसे तो सुनने के लिए बहुत कुछ है, हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे इन दोनों को यहाँ लाने के लिए, वो आ ही नहीं रहे थे सामने वो ऐसे छिपे हुए ही रहना चाहते थे, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि बड़ों के अंग संग रहते हैं, उनके पास ऐसे ही देख देख के बहुत कुछ उनके पास रहता है जो हम सुन सकते हैं, खजाना ऐसे ही देखने से ही उनके दिल में लग जाता है, फिर वो अपने जीवन में भी लाते हैं। तो इन दोनों का पुरुषार्थ मैं मना इनको नहीं देखा था, वो महेश भाई को देखा था, ज्यादातर छिपे हुए ही रहते हैं, आगे नहीं आते हैं, और दूर से ही जब भी देखते दूर से ही ओम शांति आंखों से ऐसे करते फिर निकल जाते थे। तो पुरुषार्थ ऐसे जो इन्होंने कहा बड़ों में एक बात थी, वो बहुत ही ज्यादा विनम्र होते थे और यज्ञ के प्रति प्यार होता था, वही सारे गुण हम में भी आ जाए, यही इंस्पिरेशन हम लेके दोनों भाई साहब दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आप समय निकालकर हमारे बीच आए, ऐसे ही आते रहना, हमसे शेयरिंग करते रहना, सभी खुश है ना कि ऐसे कुछ सुनने को मिला, हाँ बहुत खुश है ना। तो लास्ट में दो शब्द आप जो भी प्रेरणा देना चाहते हैं, दोनों आप दो दो शब्द उनके प्रति बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
वैसे तो आप सब लोग जो हैं इस पार्क में ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत कुछ कर ही गए हैं और करते ही रहेंगे, ज्ञान बाबा का तो प्रत्यक्ष होना ही है, लेकिन अपनी अवस्था भी अच्छी रहे उसके लिए बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया हुआ है मुरलियों में, उसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और बाबा की मुरलियों में क्या है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बाबा ने कहीं कहीं देखेंगे आप मुरलियों में एक मुरली में दूसरी पॉइंट है, दूसरी मुरली में दूसरी पॉइंट है, तो तो सबको, लेकिन वास्तविकता क्या है उसको हमको बाबा की सब मूल्यों को विचार करके रियलाइज करना पड़ेगा। तो रियलाइज करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो बाबा की मूल्य से जितना जितना हम अच्छा रत्न, क्योंकि तो रत्नों की खान है, उस खान से हम जितना ले सकते हैं उतना लेते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
आप सब तो बुद्धिजीवी है, रोज आप लोग ज्ञान के ज्ञान रत्नों के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो माँ बाप को बहुत प्यारे रहते हैं, लाडले होते हैं, उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, क्योंकि लोगों को पता रहता है ये उनका माँ बाप का इकलौता बेटा है या बहुत लाडला प्यारा है, तो क्या करते हैं, किडनैप करना शुरू करते हैं। ऐसे ही आप सदा बाबा के ज्ञान के संग रहते हैं, इसलिए आपको किडनैप करने के लिए माया रावण इंतजार करते रहते हैं। किस रूप में? किस रूप में? ज्ञान के ही रूप में। इसलिए ज्ञान के अंदर जाते जाते अज्ञान के जाल में ना फंसे। आजकल के जो है नेट इंटरनेट, इनके जाल से बच के रहे। और ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसकी परख करते हुए आप बाबा के इस ज्ञान को, इस रिसर्च को आगे बढ़ाए। और साथ साथ एक मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, रमेश भाई थे, जगदीश भाई थे, सेवा तो है ही, हमारा श्वास है, लेकिन सेवा के साथ साथ उन्होंने यज्ञ के लिए, बड़ों के लिए, बहनों के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार थे। यज्ञ के लिए कुछ भी हो जाए, पहला यज्ञ बाद में मेरा। आजकल क्या चल रहा है, पहला मैं बाद में यज्ञ, नहीं, ये भगवान के यज्ञ है। अगर हम यज्ञ के लिए कुछ बुरा किया, बुरा सोचा या अवमान किया या कराया, वो महापाप है, भगवान का हुआ। हम दो युग से भगवान के तड़पते आए हुए हैं, अभी भगवान आकर, भगवान ने जिस यज्ञ का जो स्थापन किया उसका अवमान, उसका बदनामी करने के लिए किसी भी हालत में निमित्त नहीं बने। क्योंकि जगदीश भाई अंत तक यही कहते रहे, हमारे लिए ब्रह्मावसन के लिए क्या मुख्य है, यज्ञ मुख्य है, पहले यज्ञ है बाद में मैं हूँ। अगर यज्ञ के लिए मेरा सब कुछ त्यागना पड़ता है, मेरा स्वार्थ त्यागना पड़ता है, त्याग कीजिए, उससे बड़ा त्याग त्याग नहीं हो, बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले बहनों के प्रति, यज्ञ के प्रति, दादियों के प्रति, परिवार के प्रति, धारणाओं के प्रति, मर्यादाओं के प्रति पहला स्थान। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दोनों महारथियों को। अभी योग के लिए गीत के बजाने के बदले भावना बहन जो स्पार्क के हैं मेंबर है वो गीत गाएंगे, उसी में हम सब दो मिनट योग करेंगे।
पुकारा करो मेरे बाबा।
में बिंदु मेरे आपके ध्यान में देह दुनिया का मैं भान खोने लगी देह दुनिया का मैं भान खोने लगी आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा मेरे बाबा लगन है लगी आप में ही है रहता मेरा मन मगन आप धरती मेरे आप मेरे गगन आप से मिल रहा है मुझे सुख सघन आप से मिल रहा है मुझे सुख अपने अपना सर्व सुवारा सदा मेरे बाबा आप पर मैं भी सर्व सुवारा करूं मेरे बाबा